أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. کامیاب اور بابراد ہوئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں اور جو بیکار اور بے مقصد باتوں سے احتراز کرتے ہیں اور جو تزکیہ نفس پر مسلسل کاربند رہتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں یعنی اپنی شہوت کی حفاظت کرتے سوائے اپنی بیویوں یا باندیوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں تو جو کوئی اس سے تجاوز کرے گا تو وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پابندی کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو وارث بنیں گے جنہیں جنت الفردوس کی وراثت ملے گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں جن پر ہمارے اس منتخب نصاب کا 10th سبق مشتمل ہے. اسی سے اس منتخب نصاب کے 3rd حصے کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور یہ حصہ مشتمل ہے قرآن حکیم کے کچھ ایسے منتخب مقامات پر جس میں اعمال صالحہ کی کسی قدر تفصیل بیان ہوئی، یعنی انسانی زندگی کے عملی اور اخلاقی پہلو. اگرچہ اس سے پہلے بھی جتنے دروس اس سلسلہ درس میں ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک میں بلا استثناء ایمان کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے عملی اور اخلاقی پہلوؤں کا بھی ذکر ملا ہے. ایمان کے عملی تقاضے، ایمان کے عملی لوازم، ایمان کے عملی اور اخلاقی نتائج، یہ تقریباً تمام اسباق میں ہمارے سامنے آتے رہے. لیکن اس حصے میں ہماری توجہ بنیادی طور پر فوکس اور مرتکز رہے گی اعمال صالحہ ہی کی بحث پر، और इसमें जो तदरीज पेशे नजर है उसे आप पहले ही जहन नशीन फरमा लें कि सबसे पहले हम एक फर्द, एक शख्स, एक इंसान, उसकी सीरत व किरदार, उसमें जो औसाफ मतलूब है, उनके एतबार से कुरान मजीद का मुताला करेंगे। गोया कि हम ये जानना चाहेंगे कि कुरान का इंसान मतलूब कैसा होता है, जिसकी नक्शा किसी अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में मर्द मोमिन के हवाले से की, उसकी क्या खसूसियात होती हैं, उसकी सीरत और किरदार में कौन से पहलू नुमाया होते हैं। फिर यह बहस भी हमारे इस सिलसिला सबक में दो लेवल्स पर आएगी। एक तो यह कि तामीर सीरत के लिए असासात कौन सी, वो बुनियादें कौन सी कि जिन पर एक आला सीरत और किरदार की इमारत की तामीर हो सकती है। जाहिर बात है कि हर इमारत की एक बुनियाद होती है, उसी बुनियाद पर वो इमारत उठती है और उसी बुनियाद के मुस्तहकम होने पर उस इमारत के इस्तेहकाम का दारोमदार। तो तामीर जात या तामीर सीरत, या अगर अल्लामा इकबाल की इस्तिलाह मुस्ताद ली जाए तो तामीर खुदी के लिए कुरान मजीद क्या प्रोग्राम देता है और उसकी असासात क्या है, उसकी बुनियादें क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि उन बुनियादों पर जब एक इंसानी शख्सियत की तामीर हो जाती है बतमामो कमाल, तो उसके इम्तियाजी खदो खाल क्या, उसमें जो हुस्न और जो दिलकशी पैदा होती है वो किन नुमाया औसाफ की बुनियाद पर। मुझे याद आ रहा है अल्लामा इकबाल का वो शेर कि हूरों को शिकायत है कमावेश है मोमिन, कहते हैं फरिश्ते के दिल आवेश है मोमिन। तो मोमिन की शख्सियत की जो दिल आवेजी है वो उसकी कौन कौन सी खसूसियात, उसकी कौन कौन से औसाफ पर मबनी। फिर हम ये देखेंगे कि एक फर्द से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक खानदान वजूद में आता है। एक खानदानी और आयली जिंदगी के सिलसिले में कुरान मजीद हमें क्या रहनुमाई देता है, उसकी अमली तश्कील के लिए क्या उसूल देता है। एक अच्छा खानदान कुरान मजीद के नजदीक कौन सा है, उसके खसाइस व औसाफ क्या है। उससे हम आगे बढ़ेंगे तो खानदानों से आगे चलकर माशरा वजूद में आता है। इंसानी माशरे में कुरान मजीद किन वैल्यूज को चाहता है कि वो नाफिज हो, राइज हो, वो कौन सी अकदार है जिनकी तरवीज मतलूब है, और वो कौन से सोशल इवेंट्स हैं अधरूए कुरान कि जिनको अल्लाह चाहता है कि इंसानी माशरे में से इरेडिकेट किया जाए, उनका इस्तीसाल हो। और सबसे बुलंद तरीन सतह इस अमल साले की बहस में ये होगी कि मिल्लत और रियासत की सतह पर, हुकूमत और निजाम ममलकत की सतह पर कुरान हकीम हमारी रहनुमाई क्या करता है। तो हमारा आज का सबक इस सिलसिले का पहला सबक है और इसमें असल में वो असासात बयान हुई है, वो बुनियादें मुअय्यन की गई हैं कि जिन पर एक मर्द मोमिन की शख्सियत की तामीर हो सकती है। इंसानी सीरत और किरदार की पुख्तगी के लिए जो लवाजिम है उनका तायुन किया गया है। अल्लामा इकबाल का वो शेर आपके जहन में होगा कि खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू, और पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजनहार तू। तो ये पुख्तगी, ये इंसानी सीरत और किरदार का मुस्तहकम हो जाना, इसके लिए कौन सी मेहनत जरूरी है, कौन सी मुशक्कत रियाजत है कि जिसकी तरफ कुरान मजीद रहनुमाई कर रहा है। अब आप जरा नोट कीजिए तो अभी जो आयात आपने समाप्त फरमाई और उनका तर्जुमा भी सुना तो इसमें कुछ औसाफ है कि जो सिलसिलेवार बयान किए। अहम तरीन बस है सलात, जिसका हम आम तौर पर तर्जुमा नमाज करते हैं, और खास तौर पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इस फेहरिस्त में आगाज भी नमाज से हुआ, इख्तिताम भी नमाज पर हुआ। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, कामयाब हो गए वो अहले ईमान जो अपनी नमाजों में खुशू से काम लेते। और फिर चंद और औसाफ बयान करने के बाद आखिरी बस फिर बयान हुआ والذين هم على صلواتهم يحافظون, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, मुहाफजत करते हैं। मालूम हुआ कि इस फेहरिस्त में अव्वल भी नमाज है, आखिर भी नमाज है। इससे खुसूसी रहनुमाई हुई कि तामीर सीरत का जो कुरानी प्रोग्राम है उसमें इंतहाई अहमियत का हामिल नमाज का प्रोग्राम और नमाज का हिसाब। दूसरा वस्फ आता है एराज अनिल्लग, बेकार बातों से एहतराज करना, बचना, दामन बचाए रखना, अपने वक्त की कदर कीमत का एहसास रहे और इंसान हर हर लम्हे को मुफीद बनाए, बामकसद बनाए, नतीजा खेज बनाए। इंसान के वक्त का सर्फ या तो इस हयात दुनियावी की किसी हकीकी जरूरत को पूरा करने के लिए हो रहा, और या अपनी हयात मानवी की तथहीर, उसके तजकिये के लिए हो रहा हो, या हयात उखरवी के लिए कुछ कमाने और बनाने के लिए हो रहा हो, इसके सिवा वक्त का सर्फ ज़िया भी है, ज़िया भी। तीसरा वस्फ आता है वो लोग जो ज़कात पर अमल करते रहते। यहां नोट करने वाली बात है कि अमूमन कुरान मजीद में ज़कात के साथ लफ्ज़ ईता आता है, वह आतु ज़कात यूतून ज़कात, यहां बिल्कुल मुख्तलिफ फ़ेल इस्तेमाल हुआ, वल्लज़ीनहुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, मुसलसल कोशा रहते हैं, मुसलसल कारबंद रहते हैं तज़किया नफ्स के लिए, उनकी जिद्दोजहद मुसलसल जारी रहती। चौथा वस्फ है जिसे हम ताबीर करेंगे अपनी शहवत जिंसी जज्बे पर कंट्रोल, सेक्स डिसिप्लिन, कि जो भी उसके लिए जायज राह है उस पर इक्तफा की जाए। उसके बारे में यह भी सराहत कर दी गई कि इन जायज राहों से अगर कोई अपने इस जज्बे की तस्कीन करता है तो इसमें हरगिज कोई मलामत वाली बात नहीं है। यानी जिंसी जज्बा, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की नफ्स से ही ईवल नहीं है, शर नहीं है, बुराई नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल वो बुराई है। अगर ये डिसिप्लिन्ड हो और परवर्ट न हो, न तो इसमें बेकाबू हो जाने की कैफियत पैदा हो और न बेराह रवि पैदा हो, तो फी नफ्से ही ये कोई मलामत वाली बात हो। उसके बाद छठा वस्फ आया अपने, पांचवा वस्फ अमानतों की पासदारी, वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वाहदिहिम राऊन, और छठा वस्फ ईफाए अहद। ये छह है वो, यूं कहिए कि कॉर्नर स्टोन्स है, ये असासात है, ये बुनियादें हैं कि जिन पर इंसानी शख्सियत के उस रुख पर तागीर का अमल मबनी हो सकता है कि जिस रुख पर अल्लाह को इंसान की शख्सियत की तामीर पसंद, तामीर ज़ात, तामीर सीरत, तामीर किरदार के भी मुख्तलिफ मेयारात हो सकते हैं, मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ फलसफों पर मबनी इंसानी सीरत और किरदार के मुख्तलिफ हुयूले लोगों के जहन में हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का इंसान मतलूब, कुरान का मर्द मोमिन, जो सीरत और किरदार मतलूब है इंसान में अल्लाह को, उसकी तामीर के लिए ये छह इनएविटेबल असासात, ये बुनियादें हैं। उनकी अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मैं ये चाहूंगा कि कुरान मजीद का एक और मकाम भी, जो मानी और मजामीन के एतबार से इसके बहुत मुशाबे है, वो आपके सामने आ जाए। इससे एक तो ये हकीकत सामने आएगी कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा, कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। एक ये हकीकत सामने आएगी कि कुरान मजीद में अहम मजामीन बार बार आते हैं, दोहरा दोहरा कर आते हैं, और जो मजामीन बड़े आधा आएंगे, बार बार आएंगे, गोया कि उनकी अहमियत मुसल्लम होती चली जाएगी। चुनाचे देखिए 29वें पारे में सूरह मारिज, उसकी आयात 19-35 में पढ़ रहा हूं और उनका तर्जुमा भी साफ करूंगा ताकि तकाबुल होता चला जाए कि सूरह मोमिनून की उन इब्तदाई 11 आयात और सूरह मारिज की 17 आयात में किस कदर मुशाबहत है। फरमाया इन्नल इंसान खुलक हलुआ, यकीनन इंसान कुछ चुड़दिला और कुछ कम हिम्मता पैदा हुआ है। इज़ा मस्सहु शर्र जज़ूआ, जब इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो जज़ा फ़ज़ा करता है, फरियाद करता है, नाला और शैमन करता है। वइज़ा मस्सहु खैर मनुआ, लेकिन जब उसको कोई खैर मिलता है तो दौलत हाथ आती है, नेमतें अल्लाह ताला देता है, तो उन्हें रोक रोक कर रखता है, फेद फेद कर रखता है, दूसरों तक उनको नहीं पहुंचने देता। यह है असल में इंसान की सीरत की उस खामी की तरफ इशारा कि जिससे इंसान की रिश्तेदारी और उसको आजादी दिलाना, ये इस प्रोग्राम का मकसद है। फरमाया इल्लल मुसल्ली, सिवाय उनके कि जो नमाज के खूगर और आदि है। नमाजी, मालूम हुआ कि यहां नमाज की इतनी अहमियत सामने आई कि वहां जो कद अफलहल मोमिनून का लफ्ज आया था उसकी बजाय यहां मुसल्लीन, गोया कि मोमिन और नमाजी, ये मुतरादिफ है। हम मानी अल्फाज अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाजों पर मुदावमत करते हैं, हमेशा की इख्तियार करते हैं। والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, और वो के जिनके अम्वाल में हक है मुअय्यन और मालूम, मांगने वालों के लिए भी और उनके लिए भी जो किसी सबब से महरूम रह गए। ये गोया के सूरह मोमिनून में जो अल्फाज आए والذين هم للزكاة فاعلون, ये उसके मुतवाजी अल्फाज यहां। फिर फरमाया वल्लज़ीन युसद्दिकून बियौमिद्दीन, और वो जो रोजे जज़ा, रोजे क़यामत की तस्दीक करने वाले, वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफ़िकून, जो अपने रब के अज़ाब से लर्ज़ा और तरसा रहते हैं, डरते रहते हैं, इन अज़ाब रब्बिहिम गैर महमून, और वाक़ईतन उनके रब का अज़ाब ऐसी ही चीज है कि जिससे निचंत नहीं हुआ जा सकता, जिससे बेखौफ होना मुमकिन नहीं। इसका ताल्लुक मैं बाद में अर्ज करूंगा कि एराज अनिल लफ्ज से, ये ईमान बिल आखिरत है जिसके नतीजे में इस दुनिया की जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती हो जाता है, और उसका हासिल है एराज अनिल लफ्ज, बेकार बातों से दामन बचाना, पहलू सही करना। उसके बाद आप देखेंगे बैन ही वही अल्फाज दोबारा आएंगे, वल्लज़ीनहुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون। कोई फर्क नहीं है, बैन ही यही अल्फाज सूरह मोमिनून की उन आयात में है और बैन ही यही अल्फाज सूरह बारिश की आयात। अलबत्ता यहां एक चीज का इजाफा किया गया, अमानत और इफाए अहद पर शहादत पर कायम रहना, गवाही पर कायम रहना। والذين هم بشهاداتهم قائمون आखिर में फिर वही नमाज, والذين هم على صلاتهم يحافظون। जिस तरह वहां अव्वल व आखिर नमाज, उसी तरह यहां अव्वल व आखिर नमाज। اولئك في جنات مكرمون ये है वो लोग जो जन्नतों में होंगे और वहां उनका एजाज इकराम। तो इन दोनों मकामात को अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लीजिए, आइंदा दर्स से इंशाअल्लाह अब इनमें से एक एक मौजू पर किसी कदर तफसील में गुफ्तगू होगी।